शांति। तो अभी हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शीलू दीदी बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय मार्ग पर चलते हैं। आप मुंबई माया नगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन। मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने बीएससी की डिग्री प्राप्त की। 1969 में जब आपने बीएससी की एग्जाम्स दी और जिस वर्ष बाबा भी अव्यक्त हुए, बाबा तो जनवरी में अव्यक्त हुए और आप अप्रैल में अपनी एग्जाम देकर फ्री हुए, तो जैसे ही एग्जाम देकर फ्री हुए आप मधुबन में आए जहां कन्याओं को टीचर्स ट्रेनिंग दी जा रही थी, पहला बैच था। आपने उसमें पार्टिसिपेट किया और उसके द्वारा आप तैयार हो गए एक राजयोगा टीचर के रूप में। और फिर बाबा ने, दादियों ने आपको सेवाओं के लिए विभिन्न स्थानों पर भेजा, जैसे कि राजकोट, बैंगलोर, हैदराबाद, काठमांडू, अफ्रीका, मॉरिशस। तो 69 से लेकर 76 तक बाबा ने आपको देश और विदेश की धरनियों पर, अलग अलग स्थानों पर सेवा अर्थ भेजा, जहां आप सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने, बाबा का नाम बाला करने के निमित्त बने। और फिर जब 76 में, यूं तो प्रतिवर्ष आते रहे पर जब 76 में आप आए तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर इंतजार कर रहा था। समझ सकते हैं कौन सा इंतजार सुनहरा अवसर होगा? आपको गोल्डन लॉटरी मिली कि बाबा ने आपको मधुबन निवासी बनने का सुंदर ऑफर दिया और जिसको आपने बहुत ही सहर्ष स्वीकार किया। क्योंकि मधुबन निवासी इसलिए क्योंकि उस समय बाबा के घर में देश विदेश के बच्चे आरंभ हो गए थे विजिटर्स के रूप में भी। तो एक इंग्लिश जानने वाला, हिंदी जानने वाला, न सिर्फ भाषा जानने वाला लेकिन बाबा के ज्ञान को अच्छी से समझाने और सुनाने वाला, ऐसे हैंड की जरूरत थी। दादियों ने आप में वो सब देखा और आपको मधुबन निवासी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और तब से लेकर आज दिन तक आप इसी धरनी पर रहकर देश विदेश में अपनी सेवाएं कर रही हैं। बाबा ने आपको बहुत सुंदर वरदानों से सजाया है, उसमें से दो मुख्य का मैं उल्लेख करूंगी। बाबा ने आपको कहा कि विद्या की देवी सरस्वती सदा ही आपके जीवा पर विराजमान रहेगी और दूसरा, आप कौन सी गंगा है? हर की पौड़ी की गंगा है। और जिसको आप बहुत अच्छे, उस वरदान को हम देखते हैं, प्रैक्टिकल स्वरूप हमें उसका दिखाई देता है। आप यज्ञ के अंदर राजयोग शिविर की डायरेक्टर हैं, एजुकेशन विंग की वाइस चेयरपर्सन हैं और इंटरनेशनल इंटरप्रेटर हैं, ट्रांसलेटर हैं। और जब विदेशी भाई मैंने यहाँ आते हैं तो उनका भी प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करते हैं। न सिर्फ प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करना लेकिन उन सबको बाबा के घर की, अपने पन की फीलिंग से भरपूरता का एहसास दिलाना। आज हम देखते हैं, आज हमारे पास दादियां तो अव्यक्त होती चली जा रही हैं, लेकिन आपने जो मम्मा से, बाबा से, दादियों से पालना ली है, आज दादियों के अव्यक्त होने के बाद उन पालना का आप ऐसा रिटर्न दे रहे हैं कि इस मधुबन धरनी पे जब भी कोई आता ये कमी महसूस नहीं करता कि हम दादी से मिले नहीं, वो आप पूरी कर देते हैं। और इतना अपनेपन से, इतना समीपता से सबसे मिलते कि सबके मुख से निकलता, दीदी तो हमारी अपनी है, जब चाहो उनसे हम मिल सकते हैं। लेकिन साथ साथ दादियों ने जो सिखाया, यज्ञ रक्षा, खुद की रक्षा, मर्यादाओं की रक्षा करना, उन पर भी अवश्य ही अटेंशन खिंचवाते हैं। और आपके जीवन में तीन गुणों की मधुरता, सरलता, सहनशीलता की त्रिवेणी सदा बहती रहती है, जो आप भी यहाँ तीन चार दिनों में रह के स्वयं अनुभव करेंगे। तो बहुत ही गुणों की खान, अनुभवों की खान दीदी हमारे बीच में है। यूं तो हमारा भट्टी का लक्ष्य है संपन्नता की ओर, वो तो बेहद बड़ा लक्ष्य है, लेकिन उस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने होते हैं। तो उसमें से एक लक्ष्य है देह अभिमान की ग्रहचारी से मुक्त रहना, जो आज भी बाबा ने हमें रिमाइंड कराया। तो हम दीदी से सुनेंगे कि कैसे हम देह अभिमान की ग्रहचारी से स्वयं को मुक्त करते जाए। आदरणीय दीदी जी,
अपना भी परिचय देना।
शरीर का नाम इंदिरा बहन है। 1987 में ये बाबा का ज्ञान मिला और 1998 में समर्पित जीवन की यात्रा आरंभ की। आरंभ के 5 वर्ष ज्ञान सरोवर एकेडमी में हमने सेवाएं दी, स्पार्क ऑफिस में, जहां बाबा ने इस आत्मा को निमित्त बनाया, मनोबल एवं मनसा सेवा नाम की पुस्तक लिखने के लिए, जो इतनी मोटी है, जो लिटरेचर में भी सेल होती है। और उसके बाद तो बाबा ने सेवा केंद्र के भी अनुभव कराए। हम चूंकि नागपुर सब छोन से आते हैं, तो नागपुर सेवा केंद्र पर रहने का भी अवसर मिला। और चूंकि हम इस पार्क से जुड़े हुए थे, मतलब कि रमेश भाई उषा बहन से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने भी अपने गामदेवी सेवा केंद्र पर रहने का अवसर दिया। और फिर सेवा केंद्रों का अनुभव करके बाबा ने पुनः हेडक्वार्टर में रहने का अवसर दिया। शुरुआत तो ज्ञान सरोवर एकेडमी से की थी, एकेडमी में रहकर फिर सेवा केंद्रों पर रहे और पुनः 2009 में मुख्य हेडक्वार्टर पांडव भवन रहने में हमें सौभाग्य मिला। तो 2009 से आज दिन तक हम यहाँ पर रहकर शीलो दीदी के साथ उनके ग्लोबल ऑफिस में सेवाएं देते हैं, उनकी जो भी सेवाएं हैं उसमें अपना सहयोग देते हैं। ओम शांति।
एक मिनट, ये मैं देख रही हूँ कुछ भाई बाहर खड़े हैं, जो भाई नीचे बैठ सकते हैं वो सब नीचे आए और बहने इस तरफ आए। बहने इतनी सारी यहाँ पर आए, थोड़ी टीचर्स बहने और भाई जो नीचे बैठ सकते हैं, और मैं देख रही हूँ बाहर कुर्सी लगा कर बाहर बैठे हैं, वो सब आगे आ जाएं, अंदर आ जाएं। जो नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे बैठे, यहाँ सोफा पर बैठे, थोड़ा लाइन में बैठेंगी बहने, अच्छी तरह से व्यवस्थित बैठे।
ये टोटल जो 4 सोफा है, 2 इस तरफ भाइयों के रहे और 2 उस तरफ।
ये सोफा भाइयों के लिए है, कोई आगे माताएं लगताएं वहाँ बैठी है, इतनी सारी माताएं ज्यादा है शायद।
हाँ, ऐसे लगता है।
कोई बात नहीं, ठीक है। तो भाई माताएं आगे आ जाओ या तो, और भाई उस तरफ भी बैठ सकते जब पीछे पीछे खड़े हैं वहाँ, हमने देखा। आगे आ जाए।
और हाँ, आपका भी परिचय हम दीदी को दे दें, कि जो इस ज्ञान मार्ग पर 1 से 5 वर्ष तक के बच्चे हैं वे जरा हाथ खड़ा करें। 1 से 5 मोस्ट वेलकम है आपका। जो 5 से 10 वर्ष के बच्चे हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जो 10 से 15 के बीच के बच्चे हैं बहुत हार्दिक स्वागत आपका भी। 15 से 20 वो भी है आपका भी स्वागत। और 20 से ऊपर तो पूरा ही मिक्स ग्रुप है, सभी का स्वागत है। चाहे आप मानसा से आए हैं, चाहे आप सिरसा से आए हैं, चाहे आप भटिंडा से आए हैं, और चाहे इक्के दुक्के को ये लॉटरी मिल गई
हाथ उठाएं में। जो मानसा से आए हैं वो हाथ उठाएं।
हाँ जी। और जो भटिंडा की संख्या ज्यादा है
भटिंडा।
और जो सिरसा से आए हैं और जो न मानसा से है न सिरसा से है न भटिंडा से, जो किसी और स्थान से, बीच बीच में किसी किसी को चांस मिल जाता है, तो आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी सुनते हैं आदरणीय दीदी जी से।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मधुबन तपोभूमि में, वरदान भूमि में, परिवर्तन भूमि में, ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि में, सर्व दादियों की तरफ से, मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से और हमारी तरफ से भी आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मधुबन तपोभूमि में आना और यहाँ तपस्या करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। अवश्य आप में से कई ऐसे भाई बहने होंगे जिनका नाम नहीं भी होगा लिस्ट में, लेकिन ऐन मौके पर तैयार हो गए और आपको कहा गया कि आप चलिए और आप पहुंच गए। और कई ऐसे भी होंगे जिनका नाम लिस्ट में था लेकिन किसी कारणवश उनका कैंसिल हो गया, वो नहीं आ सके तो रह गए। परंतु हम तो यही कहते हैं जो यहाँ पहुंचे वो बहुत 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 भाग्यशाली हैं। तो इसीलिए एक बार जोर से अपने लिए ताली। आप सभी को आते ही बैज मिला, योग तपस्या भट्टी संपन्नता की ओर चले, क्योंकि यही बाबा हमसे चाहते हैं कि हम संपन्न संपूर्ण बने। बाबा की आजकल की जो भी मुरलियां हैं उसमें बाबा हम बच्चों को यही ताकीद करते रहते हैं, क्योंकि घर जाना है, नई दुनिया में आना है और ये कलयुगी दुनिया गई की गई। उस सतयुगी नई दुनिया के लिए तैयारी करनी है। भविष्य के एक धर्म एक राज्य लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने के लिए यहाँ हमें हमारे अंदर एक धर्म एक राज्य लॉ एंड ऑर्डर हो, उसके लिए भी बाबा ने उस दिन जो मुरली चली बहुत सुंदर युक्तियां बताई। तो संपन्नता की ओर जाना है क्योंकि संपन्न बने बिना हम घर वापस नहीं जा सकते हैं। तो चाहे हम योग बल से संपन्न संपूर्ण बने, चाहे सजा बल से बने, लेकिन बनना जरूर है। चाहे प्यार से बने, चाहे मार से बने, बनना जरूर है। तो दोनों में से क्या पसंद करेंगे? हैं, मार से कौन पसंद करेगा? और बाबा कहते हैं, मोचरा भी खाओ और टुकड़ा मानी रोटी मिल जाए, वो कौन पसंद करेगा? इसलिए प्यार से सम्मान से हम वापस घर जाएं, बिना धर्मराजपुरी की सजाएं खाएं, उसके लिए हमें यहाँ ही संपन्न और संपूर्ण बनना होगा। और हर मुरली में बाबा हमें जरूर इशारा देते हैं कि तुम्हारी युद्ध माया के साथ है, तुम डबल अहिंसक हो, तो लेकिन ये माया से युद्ध तुम्हारी जैसे तुम ब्राह्मण बने वैसे शुरू हुई। उसके पहले युद्ध नहीं थी, क्योंकि माया के ही मुरीद थे, विकारों के ही मुरीद थे। हमें पता ही नहीं था कि ये विकार कोई हमारे दुश्मन है। हम तो इनको मित्र समझकर बैठे थे, इनको अब हम अपना साथी सहयोगी समझ करके बैठे थे। लेकिन जैसे ही बाबा का ज्ञान मिला तो हमें पता चला कि ये माया, ये पांच विकार, ये तो हमारे दुश्मन है। दुश्मन का काम क्या होता है? दुश्मन आक्रमण करता है ना, तो दो चीजों पर आक्रमण करता है विशेष। एक तो उनका जहां से उत्पादन है, रिसोर्स है, उत्पादन है, उसको अटैक करेगा पहले। और दूसरा, अगर उत्पादन पर अटैक किया तो सहयोग मांगेगा वो, तो वो सहयोग भी न ले सके, इसलिए उनका जो कम्युनिकेशन लाइन है, टेलीफोन या जो भी कम्युनिकेशन जो और देशों के साथ हो सकता है, उसको भी काट देगा। तो दो चीजों पर विशेष आक्रमण, एक तो उत्पादन पर जहाँ से उसकी शक्ति मिलती है उसे, और दूसरा दूसरे से शक्ति न ले सके इसलिए उसको भी काटते हैं। तो माया भी दुश्मन क्या करती है? सबसे पहले हमारी जो आंतरिक शक्तियां हैं उसको नष्ट करती है। काम क्रोध लोभ मोह के वश होकर हम जो आत्मा के मूल गुण हैं उनको गंवा बैठते हैं। तो आंतरिक शक्ति भी नष्ट होती है, और फिर परमात्मा से हमारा योग तोड़ने के लिए वो बहुत कोशिश करती है, व्यर्थ संकल्प लाकर, ताकि हम बाबा से शक्ति भी न ले सकें। चलो अपनी नहीं है शक्ति तो हम बाबा से लें, वो भी लेने नहीं देगी। तो दोनों बातों पर माया अटैक करती है, इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि ये माया की ग्रहचारी है। ग्रहचारी जब बैठती है तो एक तरफ तो नुकसान बहुत होता है, और दूसरी तरफ विघ्न भी आते रहते हैं, परीक्षाएं बहुत आती है, बहुत अनेक चारों तरफ से ही समस्याएं आने लगती है जब ग्रहचारी होती है। अपनी शक्ति भी गंवाते हैं, हर प्रकार की संपत्ति भी गंवा देते हैं, ग्रहचारी बैठी है। तो ये विकारों की ग्रहचारी है जो आत्मा को अटैक करती है। और बाबा कहते हैं इनकी जो जड़ है वो है देह अभिमान। जैसे रावण का एक एक सिर काटने की कोशिश करने पर रावण नहीं मरा, परंतु जब उसकी नाभि में मारा तब रावण मरा। इसीलिए माया कहो रावण कहो, उसका जो सोर्स है, जो उसका मूल स्रोत है, वो है देह अभिमान। और बाबा कहते हैं ये द्वापर युग से शुरू हुआ, तभी तो माया आई, सतयुग त्रेता में तो थी नहीं, इसीलिए आत्मा शक्तिशाली थी। लेकिन द्वापर युग से जैसे ही देह अभिमान के वश हुए, विकारों का आक्रमण हुआ या विकारों की प्रवेशता हुई, और आत्मा धीरे धीरे शक्तिहीन होती गई। अब वापस हमें अपने ओरिजिनल स्टेज तक जाना है, इसलिए हम एक एक विकार को अगर हम जीतना चाहेंगे तो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि ये सब इन सब की दोस्ती है, पक्की दोस्ती है ना। एक को अगर हमने हराया भी तो वापस आ जाएगा, क्योंकि और चार तो हैं, दूसरे को हराया तो पहले वाले आ जाएंगे। इसलिए अगर मारना है तो सबको एक साथ मारना होगा, एक एक करके नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं इनकी जड़ है देह अभिमान। तो देह अभिमान की ही बड़ी ग्रहचारी है, और कैसे ये देह अभिमान अनेक विकारों को लाता है और वो माया कैसे पकड़ती है, इसका भी बाबा ज्ञान हमें देते हैं। आज भी बाबा ने कहा कभी नाक से पकड़ती है, कभी कान से पकड़ती है, तो इसमें और भी बहुत है तरीके माया को पकड़ने के, माया पकड़ती है। तो नाक से जब पकड़ती है तो क्या होता है, जैसे किसी को नाक से पकड़ो तो सांस नहीं ले पाता है, सफोकेशन होता है ना, दम घुटता है। तो माया कैसे नाक से पकड़ती है, जब कंफ्यूजन आता है, ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, मूंझ जाते हैं, मूंझ ज्ञान में एक मूंझ जगाते, एकदम स्पष्टता अचानक मूंझना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब माया ने नाक से पकड़ा है। फिर कान से कैसे पकड़ती है माया, जब हम सुनी सुनाई बातों पर चलते, उसने क्या कहा, उसने क्या किया, उसने तो जो बाबा कहते पर चिंतन, पर निंदा, पर ग्लानी, हाँ कान खड़े हो जाते मानो जैसे पकड़ते तो कान खिंच जाते ना, तो ये माया की प्रवेशता कान से होती है। तो इसीलिए पर चिंतन, पर निंदा, पर ग्लानी, पर मत, बाबा कहते ये सारे पर काट दो और कौन सा एक पर जोड़ो, पर उपकार। तो इसीलिए माया कान से ऐसे पकड़ती है जब और बातों में जाते हैं हम। फिर माया क्या करती है, फिर पीछे चोटी से पकड़ती है ना, बाबा ने एक बार कहा था माया चोटी से पकड़ती है, चोटी होती है ना बहनों की, तो चोटी से पकड़ती है तो क्या होता है, अब जैसे किसी को चोटी से पकड़ा तो पीछे मुंह चला जाता है, तो हम अपनी पीछे की बातें याद करना शुरू कर देते हैं। जब मैं ज्ञान में नहीं थी तो मैं तो बहुत स्वतंत्र थी, मैं जो चाहूं सो करूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं था। अब मैं ज्ञान में आ गई हूँ, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, अमृत वेले उठना है, पहले तो जब चाह उठूं कुछ भी करूं, तो पीछे जो मेरी स्वतंत्रता थी वो ऐसे अनुभव होती कि वो खत्म हो गई। या कई समय से पहले मैं शराब पीता था, मैं ये करता था, स्वतंत्र था, बड़ा उसको पॉजिटिव समझते हैं, और इसीलिए अभी तो वो खत्म हो गया, बाहर का नहीं खाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना, कई कहते हैं बंधन लगता है। लेकिन ये बंधन हमें सब बंधनों से मुक्त करेंगे ये उस समय समझ में नहीं आता है। या तो अगर पिछली बातें याद करते हैं और उसको दूसरे रूप में लेते हैं कि मैं जब ज्ञान में आया तो उस समय तो मेरे अंदर बहुत व्यसन थे, बहुत क्या क्या थी बुराइयां, और ज्ञान में आने के बाद मैं तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, तो इसका अभिमान भी आता है, मैं तो बहुत अच्छा हो गया, मैंने शराब छोड़ी, मैंने सिगरेट पीना छोड़ा, मैंने ये सब छोड़ा, छोड़ दिया, अभी तो मैं बहुत अच्छा हो गया, और बहुत अच्छा हो गया हूँ, हो गई हूँ, और ये समझ कर वहीं रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। ये तो ऐसे हुआ जैसे कोई जीरो मार्क्स ही लेता हो और एक बार अच्छी थोड़ी पढ़ाई की तो पासिंग मार्क्स मिल गई, अब पासिंग मार्क्स मिल गई, पास तो हो गया, खुशी हो गई, मैं तो पास हो गया। लेकिन जो होशियार स्टूडेंट होगा वो पास हो गया इतने में खुश हो जाएगा, क्या करेगा हाँ? तो जो डल स्टूडेंट होता है वो तो जीरो से अपनी मार्क्स को गिनती करेगा, हाँ 40% मिल गया पास हो गया, या 50% जितना भी पासिंग मार्क्स है। लेकिन जो होशियार विद्यार्थी होगा वो जीरो से थोड़ी काउंट करेगा, वो किससे, कौन से नंबर से काउंट करेगा, 100 से करेगा। 90% मिला तो कहेगा मेरे 10% कहाँ गए, 90 क्यों मिला, मुझे 100 out of 100 मिलना चाहिए था, 100% मेरा ये इस सब्जेक्ट में मुझे मार्क्स मिलनी चाहिए, 90 क्यों मिले। माना वो 100 से गिनती करेगा और डल विद्यार्थी जीरो से करेगा, कितना अंतर हो गया। तो हम पीछे की ओर मुड़ के देखते, मैं ऐसे, मैं ऐसा था, ऐसा था, मैं तो बहन जी बहुत बदल गया हूँ, बहुत बदल गया हूँ, तो बहुत बदल गया हूँ ये भी डनलॉप पिलो का गद्दा ले लिया, तकिया ले लिया और आराम से सो गया, मैं तो बहुत बदल गया हूँ। पर कहाँ तक बदलना है, इतने तक बदला तो पूरा हो गया क्या, मुझे तो इतना बदलना होगा कि जो मेरी ओरिजिनल स्टेज है उस तक पहुंचना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है। बाबा ने हमें ये लक्ष्य दिया है, ब्रह्मा बाप समान बनना है, संपूर्ण बनना है, फरिश्ता बनना है, संपूर्ण पावन होकर घर जाना है, फिर देवता बनना है, और देवता भी केवल देवता नहीं, क्या बनना है, बाद भी बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण के लिए तो सब हाथ उठाएंगे और राम सीता तो नहीं, तो बनना है लक्ष्मी नारायण। लेकिन फिर बाबा कहते हैं नारद की तरह शक्ल तो देखो तो इसीलिए बाबा हमें कहां भी खड़ा नहीं करते, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो जब हम सतयुग से नीचे आए तो चलो एक एक सीढ़ी नीचे उतरे, 21 जन्म लिया आधा कल्प, लेकिन द्वापुर से जब उतरे तो उतरे नहीं, बाबा ने एक मुरली में कहा गिरे। अब जब कोई सीढ़ियों से गिरता है तो कैसे गिरता है, एक एक सीढ़ी गिरता है क्या, धड़ाम से ऐसे गिर जाता है, और एकदम गिरा तो हड्डी हड्डी भी टूट जाती है, होती है ना, तो ये विकार भी तो ऐसे ही है ना, कैसे गिरे हम और आत्मा की शक्ति नष्ट हो गई। अब चढ़ना है तो कैसे चढ़ना है, सीढ़ी सीढ़ी से तो चढ़ना नहीं है, तो बाबा हमें लिफ्ट देते, बाबा कहते मैं लिफ्ट देता हूँ, लिफ्ट में आराम से चढ़ो। आज एक छोटी बच्ची मिली, मैं 10 साल की होगी, सेवा में आई है माँ के साथ, तो कहती है कि दीदी ये विशाल भवन तक लिफ्ट होनी चाहिए। क्यों, इतनी छोटी बच्ची, तुम तो चढ़ सकती हो। नहीं, लिफ्ट चाहिए अभी छोटी बच्ची को लिफ्ट चाहिए, सब जारी बूढ़ों का क्या होगा तो मैंने कहा अच्छा तुमको भी लिफ्ट चाहिए, क्योंकि आदी हो गई ना लिफ्ट, लिफ्ट में जाने की, सीढ़ियां चढ़ने की मेहनत कोई नहीं करना चाहता, छोटा बच्चा भी नहीं करना चाहता। तो मैंने कहा, तो उसकी मम्मी साथ में थी, तो मैंने कहा इसको लिफ्ट चाहिए, क्यों सीढ़ियां नहीं चढ़नी। तो माँ कहती है उसको लिफ्ट में मजा आता है, जब देखो लिफ्ट में चली जाएगी, लिफ्ट उसको अच्छा लगता है, कैसे ऊपर जाते तो ये भी बच्चों का खेल समझ लिया है। तो देखो बाबा कहते हैं कि माया कैसे पछाड़ती है, किस किस रूप में पछाड़ती है, फिर हाँ चलो चोटी पकड़ी, फिर आगे क्या करती है माया, थप्पड़ मारती है, थप्पड़ भी मारती है ना, तो थप्पड़ मारती है तो उसमें क्या करती है, जैसे साइड में मुंह कर देती है, तो साइड में मुंह देख करना माना सबको देखना, ये तो पुरुषार्थ करता ही नहीं है, फिर मैं क्यों करूं, ये इतना पुराना, मैं तो अभी अभी आया हूँ, ये भी ऐसा है, तो सब ऐसे ही है, ऐसे ही है, हाँ सब ऐसे ही है, हाँ तो इसीलिए माया ने थप्पड़ मारी। तो माया नाक भी पकड़ती है, कान भी पकड़ती है, थप्पड़ भी मारती है, और पीछे भी सिर करती है, और फिर आगे क्या करती है, बाबा कई बार कहते बॉक्सिंग है, ठोसा मारती है ना, मारते है ना बॉक्सिंग में, तो बॉक्सिंग है, तो ऐसे माया गिरा देती है, खाली पीछे नहीं मुंह करते, गिरा देती है, और गिरा दिया माना जैसे कि बेहोश हो गए, क्योंकि बेहोश जो होता है वो तो गिर जाएगा, वो खड़े खड़ा थोड़ी रहेगा, तो माया गिरा देती है। फिर डिपेंड्स कि कौन से विकार से गिरे, अगर काम विकार से गिरे तो सब हड्डियां तोड़ देती है, सारे पांव, तो जैसे 5 मंजिल से गिरा। तो इसीलिए गिराकर बेहोश कर देती है और धीरे धीरे मार भी डालती है। यही बाबा कहते ना, गए वापस उस पुरानी दुनिया में तो क्या हुआ, क्या कहेंगे, मार दिया, हाँ खत्म। तो इसीलिए मार डाला। तो बाबा कहते फिर क्या करेंगे, वो फिर दोष देंगे ब्रह्मा कुमारियों को, है अपनी गलती, है अपनी कमजोरी, पर उस कमजोरी को न देख करके दूसरों को कमजोरी, दूसरों को कहेंगे, दूसरे के कारण। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लेम गेम, दूसरे को दोष देना, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, उसके कारण। और बाबा क्या कहते हैं, किसी को दोष मत दो, हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है, किसी को देखो मत, सबका ड्रामा में जो एक्यूरेट पार्ट है वो चल रहा है, आप अपने आप को देखो बस, मैं क्या कर रहा हूं। तो इसीलिए बाबा अटेंशन दिलाते हैं, और इसलिए बार बार बाबा हम बच्चों को यही कहते, बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो, यही एक दवाई है। तो ये देह अभिमान की ग्रहचारी जब आती है तो शुद्ध बुद्ध ही हम भूल जाते हैं, गंवा देते हैं। उस दिन बाबा की अव्यक्त मुरली में आया था, 3 बातें बाबा ने कहती, एक है देह भान, दूसरा है देह अभिमान, और तीसरा है देह अहंकार। हाँ? तो देह भान तो सत्युग में भी रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, अभी श्री नारायण या श्री लक्ष्मी या किसी का भी नाम पुकारेंगे तो उसको अपना नाम तो याद रहेगा ना, तो देह भान तो रहेगा ना, पर अभिमान और अहंकार की बात नहीं होगी। तो इसलिए शरीर में आत्मा है तो ये शरीर जैसे दुंब है, इनकी संभाल भी करनी है, तो इसलिए सब कुछ चाहिए शरीर के लिए, रोटी कपड़ा मकान भी चाहिए, तो सब चाहिए। और बाबा तो कहते हैं कि शरीर का भी ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि नहीं रखना है, ये तो जरूर है, पुरानी जुत्ती है, 84 जन्मों का अंतिम जन्म है ये, और तमो प्रधान तत्व है वो तो है, लेकिन फिर बाबा ये भी कहते हैं इसकी संभाल क्यों करनी है, क्योंकि इसी जन्म में हमको संपूर्ण बनना है, इसलिए भले चतियां लगा के भी चलाओ, हाँ चलाओ इस शरीर को। देखो हमारी दादियों ने यही तो किया ना, दवा और दुआ, क्योंकि जैसे आयु बढ़ती जाती इंद्रियां तो शिथिल होती जाती है, चाहे कोई कितना भी कुछ भी कर ले, इसलिए दवा और पर दुआ ज्यादा, दुआएं बहुत काम का आती है। तो इसलिए दुआएं कैसे कमाएंगे, जब सेवा करेंगे, सबसे दुआ तब ले सकेंगे, पुण्य का खाता जमा करेंगे। आज भी बाबा ने कहा ऑलराउंडर बनना है, ऑलराउंड सेवा करनी है, ये नहीं कि ये मेरी सेवा नहीं है, वो मेरी सेवा नहीं है, मैं तो केवल यही सेवा है, तो उसको तो ऑलराउंडर नहीं कहेंगे, जो सेवा मिले वो हमें करनी है। तो जब हम ये बात समझते हैं तो उसके आधार से हम अपने आप को सावधान करते हैं। लेकिन देह भान माना समझ है, शरीर को कैसे चलाना है वो भी जरूरी है, ऐसे नहीं कि मुझे तो कोई शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं है, खाया कभी, सोया कभी, जो आया किया, नहीं, बाबा कहते हैं शरीर का भी पूरा ध्यान रखना है। फिर परंतु देह अभिमान, देह अभिमान एक बड़ी चीज है, कई भाई बहने देह अभिमान और स्वमान दोनों के अंतर को नहीं समझते। वैसे दुनिया में स्वाभिमान यूज होता है, और स्वाभिमान को वो क्या समझते हैं कि अपनी शान में रहना, अपनी मां, अपने मान में रहना, लेकिन बाबा जो स्वमान कहते हैं वो आत्मा का ओरिजिनल मान, वो मान में रहना। और देह अभिमान माना देह के जो भी विशेषताएं हैं या टैलेंट्स है, प्राप्तियां हैं, उपलब्धियां हैं, उनका अभिमान करना, चाहे धन का अभिमान हो, चाहे विद्या का अभिमान हो, चाहे बुद्धि का अभिमान हो, चाहे सुंदरता का अभिमान हो, ये सब अभिमान के अंतर आता है। और उस अभिमान के अंतर्गत दो प्रकार से बाबा अभिमान शब्द यूज करते हैं। एक है जिसको इंग्लिश में कहते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इतना अभिमान कि मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में, मैं हूं इसलिए ये सब है। परिवार का हेड होगा वो भी कहेगा मैं जिंदा हूं ना तभी आप लोगों को खाना वाना मिलता है, मैं मर जाऊंगा तुम लोग भूखे मरेंगे। अरे भाई क्यों भूखे मरेंगे हैं? मैं चला जाऊंगा तो सब भूखे मरेंगे मेरे घर वाले। ये तो हरे का अपना अपना कर्मों का खाता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे सब भूखे मरेंगे। वो कहानी सुनाते हैं ना एक राजा की, कि उसकी तीन बेटियां थी, तो पूछा तीनों से आप किसका खाते हो, तो दो ने तो कहा हम आपका खाते, तीसरी ने कहा नहीं मैं तो अपना भाग्य खाती हूँ, तो उसको निकाल दिया। और कैसे वो जंगल में उसको छोड़ आए, तो वो दूसरे राज्य का राजकुमार आया उसको ले गया और उसको राजकुमारी बना दिया। हाँ ऐसे कहानियां जो बताते इसके इसका राज है ना कि हर एक तो अपना भाग्य खाता, हम क्या अभिमान रख सकते हैं कि ये मैं मेरे कारण है, मैं कर रहा हूं इसीलिए है, मैं नहीं करता तो देखना क्या होगा, ये अभिमान है। तो इसीलिए एक तरफ है मैं ही सब कुछ हूं, ये है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और एक दिन वो गिराएगा। इसीलिए कहते हैं ना बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे लंबी खजूर, किस काम का वो बड़ा हुआ, क्योंकि बड़ा तो हुआ परंतु किसी को सुख नहीं दे रहा है, किसी की सेवा नहीं कर रहा है, झुकना नहीं आता है, तो फिर वो उसके आगे जाएगा भी कौन, इसलिए कौन जाएगा खजूर के पेड़ पर चढ़ के, गिर जाए तो चकनाचूर हो जाए। तो इसीलिए जो ऐसा अभिमानी होगा उनके आगे दूसरा कोई जाएगा भी नहीं, वो एक दिन अकेला पड़ जाएगा। इसलिए एक तरफ है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और दूसरी तरफ है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, माना हीनता की भावना, इतनी हीनता इतनी हीनता, ये भी देहाभिमान का ही रूप है, मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ। एक तरफ है मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ और दूसरी तरफ है मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे तो नहीं आएगा, मेरे मेरे वश की बात नहीं है। क्यों नहीं है? अगर सेवा कोई मिलती है और हम कह दे हम तो नहीं कर सकते हैं तो आगे से वो सेवा देगा ही नहीं कि ये तो नाना ही करती है नाना ही करता है, तो हम तो भाग्य हमारा खत्म हो जाएगा, भाग्य से वंचित हो जाएंगे। जो सेवा मिले तैयार, और जो सेवा देता है वो सोच समझ कर देता है ना, ऐसे थोड़ी देगा अगर नहीं आता हो तो, सोच समझ कर दिया तो कभी भी ना नहीं करनी होती है। परंतु तो बार बार ना 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 करना ये भी दे अभिमान है, मैं नहीं कर सकता मेरे से नहीं होगा। तो बाबा हाँ मिसाल देते हैं मम्मा का, बाबा ने जो कहा मम्मा को जी बाबा इतना रिस्पेक्ट अगर नहीं कर सकती होती तो मम्मा को बाबा कहते भी नहीं। तो हम भी ये समझे अगर हमको कोई बड़े कुछ कहते हैं हम ये कभी नहीं सोचे कि हम नहीं कर सकते, कहा माना दुआ भी साथ में मिल गई आशीर्वाद भी मिल जाती है करने की। हमने तो अपने जीवन में यही पक्का किया था पाठ, बताए ना कहाँ दादी जी ने हमें भेजा, तो मुंबई की रहने वाली थी, परंतु ये जरूर था जब समर्पित हुए हमने यही जरूर सोचा था मुझे मुंबई में नहीं रहना है, क्योंकि मुंबई में रहूंगी तो यहाँ तो मायावी नगरी वैसे ही है और वहीं लौकिक है सब, बंधन तो बहुत डाल रहे थे पर कैसे बाबा ने छुड़ाया। तो मैंने कहा मुझे मुंबई में नहीं रहना है, तो दादी ने मेरे से पूछा तुम कहाँ जाना चाहती हो, तो मैंने कहा जब इंग्लिश में सेवा हो, क्योंकि बाबा ने विशेषता भरी है बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। तो दादी ने मुझे बैंगलोर भेजा बहुत, लेकिन बैंगलोर में इंग्लिश की तो सेवा नहीं थी, कन्नड़ा सीख गई क्योंकि वहां तो कन्नड़ा भाषा चलती, इंग्लिश की इतनी नहीं चली, लेकिन कन्नड़ा सब वही कन्नड़ा बोलते हैं तो आखिर मैं भी सीख गई। फिर जब वापस मधुबन आई एक साल के बाद तो दादी ने कहा अभी बैंगलोर नहीं जाना है तुमको काठमांडू जाना है, क्योंकि उस समय वन की बात होगी, ये 70 की बात है। 70 में बैंगलोर गई, 71 में वापस आई, तो दादी ने कहा काठमांडू जाना है 71 में। वहाँ बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगानी थी, अभी भी सेंटर खुला ही था और बहुत फॉरेनर्स आते थे, तो दादी ने कहा आपको वहां जाना है। तो बेंगलोर छोड़ा दादी ने, बेंगलोर से फिर काठमांडू भेजा, वहां एक साल रही। कहाँ गई थी? एग्जीबिशन के लिए, और एक साल रह गई और बहुत सेवा हुई, अच्छी अच्छा हुआ, पर साथ साथ नेपाली भाषा भी सीख गई क्योंकि एक साल रही। तो फिर वापस जब मधुबन आई तो दादी ने कहा अभी तुमको नेपाल वापस नहीं जाना है, अभी तुमको हैदराबाद जाना है। जी दादी, क्योंकि वहां पर वह इंग्लिश सेवा है, आपको हैदराबाद जाना है। जी दादी, जी दादी, हाँ ये तो ही नहीं मैं तो वहीं जाऊंगी, मैं तो वहीं रहूंगी, नहीं जी दादी। फिर हैदराबाद गई क्योंकि कुलदीप बहन जो हैदराबाद में रहती है, उनके लौकिक पिताजी, उनको बाबा ने साकार में कहा था आप आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में सेवा करो, क्योंकि आंध्र में उस समय कोई सेंटर्स नहीं थे आंध्र प्रदेश में। तो और वो ऐसा स्थान पर मकान लिया जाए, बिल्कुल क्रीम जेंट्री थी और इंग्लिश, क्योंकि वहां तो साउथ इंडिया में तो चाहिए। तो वहां पर दादी ने भेजा, अब इंग्लिश तो इतनी खास नहीं थी लेकिन तेलुगु सीख गई हाँ तेलुगु चलती है। अब एक साल वहां रही तो फिर मधुबन आई तो दादी ने मुझे कहा अभी जाओ मुंबई जाओ, वहां पासपोर्ट बनवाओ। तो मनो मैं कहने का भाव है कि जी दादी जो कहो। अच्छा, अफ्रीका के लिए फिर हम तैयार हुए, पासपोर्ट बनाया, अफ्रीका गए। फिर अफ्रीका से हम मॉरिशियस आए, अफ्रीका में कई देश हैं, कई देशों में जाना हुआ। फिर मॉरिशियस में आए तो वहां तो बहुत सेवा थी और बाकायदे सेंटर खोला। फिर दादी ने कहा मॉरिशियस में आपको रहना है। जी दादी, अफ्रीका छूट गई, मैं मॉरिशियस में रहे। फिर जब मधुबन आई तो दादी ने कहा मधुबन रहना है। जी दादी तो जी दादी, जी बाबा, जी हाँ जी, हाँ जी का पाठ पढ़ाया बाबा ने और ये अंदर में संकल्प किया। तो देखो बाबा ने कितना आगे बढ़ाया। अगर मैं कहती नहीं 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 मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं करूंगी, तो क्या होता? हाँ, वहीं के वहीं रह जाते होते। लेकिन सबके दिल की दुआएं अगर लेनी है तो आज्ञाकारी बनना होगा, और आज्ञाकारी बनने के लिए अभिमान तो तोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि अभिमान के साथ फिर और क्या क्या आता है? हाँ, मोह भी आता है, लोभ भी आता है, ईर्ष्या भी आती है, पता नहीं क्या क्या आ जाता है। तो इसीलिए बाबा हमें हमेशा कहते हैं हीनता की भावना भी न हो, ना माना हीनता, क्योंकि डर, क्योंकि परिवर्तन नहीं चाहते हैं हम। परिवर्तन सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा, परिवर्तन अगर मुझे वहां से वहां जाना होगा, परिवर्तन नहीं चाहते। परंतु क्यों नहीं चाहते? एक नया अनुभव होगा, नवीनता मिलेगी। अगर उसको पॉजिटिव लेंगे तो हम वो हीनता की स्थिति नहीं आएगी। इसलिए बाबा हमें क्या कहते हैं, हीनता भी न हो, मैं ये नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, ये भी अभिमान है, मेरे से नहीं होगा, ये अभिमान है। अब ये भी ग्रहचारी है, क्योंकि हम आगे कभी नहीं बढ़ेंगे इससे। अगर आगे बढ़ना है तो आज्ञाकारी भी बनना होगा, नम्र भी बनना होगा, सहनशील भी बनना होगा, ये सारे गुण चाहिए। झुकना भी पड़ेगा, कमरना भी पड़ेगा, क्योंकि हर कदम पर हम सीखते हैं। तो ये देह अभिमान एक ऐसी ग्रहचारी है जो हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। तो इस पर बहुत हमारी खबरदारी रहनी चाहिए। तो क्या होगा? हम विकारों से दूर रह सकेंगे। जो बाबा हमें कहते हैं, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, किसी के अवगुण मत देखो, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये सब दे अभिमान के अंतर्गत आती है और वो ग्रहचारी बन जाती है, हमारी नेगेटिव थिंकिंग बढ़ती जाती है। अब हम जो बाबा की अव्यक्त मुरलियां, ये सारी साइकोलॉजी है, बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है ये। एक युगल आए थे हमारे पास, युगल मतलब ज्ञान में तो चलते थे लेकिन ऐसे ही चलते थे, रोज उनका झगड़ा चलता था आपस में। तो किसी ने कहा बहन जी आप इनके ये झगड़े सॉल्व करो। अब वो समझता था मैं हूँ, वो समझती मैं हूँ, मैं ही हूँ, और वो समझती थी कि इसको अभी ना किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, साइकोलॉजिस्ट के, जो मनोचिकित्सक है उसके पास जाना पड़ेगा, और वो भाई कहते इसको जाना पड़ेगा दोनों एक दो के लिए कहे कि इनको मनोचिकित्सक के पास जाना होगा, क्योंकि आजकल साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट सब जगह है, सब जगह, हर कंपनी में, यहाँ तक कि स्कूलों में भी है, बच्चों के लिए भी है साइकेट्री है? आजकल ये बहुत हमारे काउंसलिंग, जिसको काउंसलिंग कहते हैं, उसके अंदर में जो मन के विचार है वो उनको बताते हैं और फिर वो उनको राय देते हैं। हमारी भी कई भाई बहनें वो काउंसलर्स बन गए हैं कई संस्थाओं में, और बहुत अच्छी पे भी मिलती है, और खास करके जो वैल्यू एजुकेशन है ना, हम लोगों का जो कार्यक्रम चलता है वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, उसमें जो सर्टिफिकेट लेते हैं उनको तो बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है, काउंसलिंग की नौकरी। बच्चों को भी चाहिए, मैं तो हैरान हो गई। तो एक बहन से हमने कहा कि आप क्या क्या आपका जॉब है, मैं काउंसलिंग करती हूँ स्कूल में। मैंने कहा काउंसलिंग स्कूल में, चलो कंपनीज में करते हैं वो तो अलग बात है, स्कूल में बच्चों को भी चाहिए। तो कहा बच्चे तो माँ बाप का नहीं सुनते हैं, वो जो काउंसलर आते हैं ना उनका सुनेंगे, टीचर भी पढ़ाएगी ना, वो थोड़ी उनके जो अंदर की बातें वो पूछेगी ये करेगी, वो तो टीचर का तो काम नहीं, इसका तो पढ़ाने का ही काम है वो काउंसलिंग। तो बाबा के बच्चों के पास भी ऐसे ही आते, मगर टीचरों के पास आते होंगे ना घर की बातें, कई बातें होती है वो, की रिलेशंस की बातें, संबंधियों की बातें बहुत होती है, तुम्हारी बहनें कैसे सॉल्व करती है। पर बाबा का जो ज्ञान है, अगर आप अव्यक्त मुरलियां देखेंगे, ये सारी जैसे एक मनोचिकित्सा ही है, मनोविज्ञान है, अगर हम एक एक वाक्य की गहराई में जाएं तो। और उन सब का जो कारण है वो है ही देह अभिमान, और कुछ नहीं है। और यही बाबा कहते ये ग्रहचारी है, इसलिए बाबा हमको कहते जीते जी मर जाओ, मर जाओ, सबकी दुआएं लो, ऑलराउंडर बनो। ये जो बाबा हमको हर बात में श्रीमत देते हैं, ये श्रीमत क्या है, अपने आप को बदलो। लेकिन जो अभिमान के वश होगा वो ये कभी नहीं सोचेगा मुझे बदलना है, वो क्या सोचेगा दूसरे को बदलना है, दूसरे को बदलना है। तो हम पॉजिटिव थिंकिंग में दिखाते ना, भाई तुम एक उंगली दिखाते हो तो तीन उंगली आपके तरफ है, तो अगर उसको बदलना है, उसको बदलना है, तो आपको तो तीन गुना बदलना है, तीन गुना बदलना है, उसको तो बदलना है, पर वो तब बदलेगा जब पहले आप तीन गुना बदलो। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। एक माता आई थी, उसको किसने कहा कि आप माउंट आबू जाकर मेडिटेशन सीखो, बहुत टेंशन में थी, तो आई थी हमारे पास। तो मुझे कहती टाइम चाहिए, मैंने कहा ठीक है। तो मुझे कहती है कि मेरा जो बेटा है ना बहन जी, मैं बहुत दुखी हूँ उससे। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो कहा उसकी बुरी संगत लग गई है, बुरी कंपनी में है, शराब भी पीता है, ड्रग्स भी लेता है, मैं उसको बहुत मना करती हूँ, मानता नहीं है, और तो हर वक्त जैसे आता है रात को देर से आता है, मैं अंदर से निकल रहा जा मर जा मर जा मर जा मर जा। तो मैंने कहा अच्छा ऐसी बद्दुआ देती हो, मर जा। तो कहती क्या करूं, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, मैं क्या करूं, तो मुझे कुछ आप राय दीजिए। तो मैंने कहा कि आप पहले ये बताओ आप सचमुच चाहती हो मर जाए? नहीं 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 नहीं, नहीं। अगर चाहती नहीं हो मर जाए तो पहले ये मुख से बोलती क्यों हो? जो चीज आप नहीं चाहती हो मुख से बोलो भी नहीं ना। तो कहती मैं क्या करूं, बहुत दुखी हो जाती हूँ। मैंने कहा अब आपको मैं जो राय दूं, ये भी एक साइकोलॉजी है, साइकेट्री का ही काम है, मैं जो आपको राय दूं वो आप मानेंगे? कहती हाँ मैं मानूंगी। तो बाबा का ज्ञान ही हमें मिला है, तो ज्ञान ही तो देना होता है। तो हमने सबसे पहले कहा ये अपने आप को बदलो, मर जाओ मर जाओ मर जाओ ये कहना बंद करो। कर सकती हो? तो कहा हाँ कर सकती हूँ। फिर हमने कहा कि ये जो आपका बेटा है आप मर जाओ क्यों कहते? क्योंकि आप समझते हो मेरा बेटा है, मेरा। तो जहां मेरा सोचा ना वहां मोह तो आएगा, लेकिन अधिकार आएगा, मेरा बेटा है। मेरा बेटा है तो मैं जो कहूँ वही इसको करना है। और बाबा हमें क्या ज्ञान देते, वो तो आत्मा है, पता नहीं किस जन्म का कौन सा कर्मों का हिसाब किताब लेकर के आपके पास जन्म लिया है उसने। तो इसीलिए ये मेरा शब्द आया कहाँ से, मेरा तो कुछ है ही नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो ये मेरा बच्चा तो मोह कहाँ से आया आप। और तो दूसरा कदम क्या करो, आप अंदर में ये सोचो ये भगवान का बच्चा है। और कहते हाँ बहन जी बच्चा नहीं था तो मैंने भगवान से बहुत मान्यताएं मानी, हे भगवान बेटा दो बेटा दो बेटा दो, भगवान ने बेटा दिया तो भगवान ने बेटा दिया तो उनका है ना, आपके पास अमानत है, आप इसको अमानत समझो ना, आप ये क्यों समझते हो मेरा है, ये अमानत है, भगवान ने आपसे आपको अमानत दी है संभालने के लिए, इसलिए जो मोह है ना वो हटाओ, वो खत्म करो। अच्छा तीसरी बात, आप ये जो बोझ है आप इसको, आपको बोझ लगता है ना भाई ये बेटा ऐसे करता है, ये बोझ भगवान को दे दो, परमात्मा को दे दो। अब बाबा भी क्या कहते हैं, बोझ मेरे को दे दो बोझ मेरे को दे दो, तो वो ईश्वर को आप दे सकते हो या ये समझते हो मुझे इसका हल करना है, तो भगवान को ये बोझ दे सकती हो कि वो हल करेगा। तो कहती ठीक है करती गई। तो तीसरी बात, ये बोझ भगवान को दे दो। पहली बात, मर जा शब्द बंद करो मुंह से। दूसरी बात, अमानत समझो, ये भगवान का दिया हुआ है, मेरा नहीं है। तीसरी बात, अगर ये बोझ लगता है ये ईश्वर को दे दो। चौथी बात उसके प्रति शुभ भावना रखो। बाबा भी ये कहते हैं शुभ भावना शुभकामना, तो शुभ भावना रखो कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और पांचवी बात, आगे की शुभ कामना करो। एक है शुभ भावना, क्या अंतर है दोनों में, शुभ भावना और शुभ कामना में। शुभ भावना माना इसको अच्छे रूप में देखो, इसका गुण देखना, ये है शुभ भावना। और फिर पांचवी शुभ कामना, आगे के लिए शुभ कामना कि अगर कुछ कमी है तो वो कमी भी खत्म हो जाएगी। तो ये पांच बातें आप करो। तो उसने कहा बहन जी ठीक है। फिर मैंने कहा आप 6 महीने के बाद आप हमको लिखना कैसे है आपका बेटा। तो 6 महीने के बाद मेरे को कहती है बहन जी वो बेटा मेरा बदल गया। मैंने कहा अच्छा बदल गया, अच्छा उनको मधुबन ले आओ। और मधुबन ले आई, आश्चर्य की बात है, मैंने उस बहन को कहा तो मैं लास्ट में पूरा करती हूँ। तो जब उस बच्चे को लेकर आई तो मैंने इस बेटे से पूछा, करीब 20 साल का लड़का था, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे बदल गए। और पता है उसने जवाब क्या दिया, तो उसने पता है क्या जवाब दिया, उसने कहा क्योंकि बदल गया तो मैंने उसको कहा था आप उनको ले आना 6 महीने के बाद। तो जब बदल गया तो मैंने उनसे पूछा आप कैसे बदल गए सब, तो कहा कि क्योंकि मेरी माँ बदल गई। समझ गए कैसे बदल गया, क्यों बदला, क्योंकि मेरी माँ बदल गई। अब माँ बदल गई, मुझे आश्चर्य लगा कि अभी माँ मुझे कुछ बोलती नहीं है, माँ मुझे बहुत स्नेह दे रही है, मेरे प्रति बहुत शुभ भावना है। तो मैंने कहा अभी माँ को दुख नहीं देना है, पहले तो जानबूझ के करा था क्योंकि माँ जो कहते थे उसके विरुद्ध ही जाना है, उसके अगेंस्ट जाना है, तो माँ को तंग करना है। और अभी माँ बदल गई तो मैं ही बदल गया, तो क्या करना है हमें, अपने आप को बदलना है, बस हमको अपने आप को बदलना है। तो ग्रहचारी तो खत्म हो ही जाएगी ना, कि रहेगी ग्रहचारी नहीं होगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए अपने आप को ही देखना है, किसी अन्य को नहीं, तो कोई ग्रहचारी नहीं है, ग्रहचारी कुछ है नहीं, क्योंकि बाबा हमें क्या कहते हैं, तुम्हारे ऊपर तो बृहस्पति की दशा है, राहु की दशा तो थी जब रावण के वश थे, विकारों के वश थे, अभी तो बाबा हमें शुद्ध पवित्र बना रहे हैं, बना रहे हैं ना, तो सबकी ग्रहचारी तो उतर गई है ना, कि अभी है किसी को ग्रहचारी? राहु की तो चलो नहीं होगी, पर शनि की तो हो सकती है। शनि की दशा होती है ना तो भटकते ही रहते हैं, जो जिसको शनि की होती है घूमते ही रहते हैं, तो मन भटकना माना जैसे शनि की दशा है। और राहु तो बिल्कुल जिसमें हाथ डालेगा वो नुकसान ही होगा, लेकिन वो क्यों है? क्योंकि विकारों के वश है। इसलिए बाबा हमें बार बार ये कहते, देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, मुझे याद करो। तो क्या होगा? आत्मा को वापस वो अपनी शक्तियां भी आ जाएगी, और बाबा से योग होगा तो आत्मा संपन्न और संपूर्ण बन सकेगी। ठीक है? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
तो बहुत सुंदर युक्तियां मिली मुक्ति के लिए ग्रहचारी से। मुक्त तो हम है ही, लेकिन कभी कभी शनि की भी आ जाती है। तो दीदी का एक हाथ हिलाकर धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं।